ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के गुमला में आयोजित समारोह में जशपुर जिले की स्व सहायता समूहों से जुड़ी जनजातीय महिलाओं की कार्यकुशलता और आत्मनिर्भरता की प्रशंसा की। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत का काम 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। आरएसएस के प्रमुख और सरसंचालक मोहन भागवत कल अभनपुर के पास सोनपैरी गांव में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 10% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रवेश के लिए पात्र घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के गुमला जिले में अंतर्राज्यीय जन संस्कृति समागम समारोह कार्तिक यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने बाबा कार्तिक उरांव का स्मरण करते हुए जनजातियों के उत्थान पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने जशपुर जिले की स्व सहायता समूह से जुड़ी जनजातीय महिलाओं की कार्यकुशलता और आत्मनिर्भरता की प्रशंसा की।
छत्तीसगढ़ के कुछ कलाकारों को लेके राष्ट्रपति भवन में भी उनको कुछ दिन रखने का और अपने प्रतिभा को लोगों के सामने दिखाने का अवसर दिया था। इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करना सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। अभी जब आ रही थी, मुझे एक अधिकारी ने यहाँ महिला बहन लोग बनाए हैं कुछ माला, जंगल के घास से वो माला बनाया गया है। इतने अच्छा, उनके पास इतने कलाकृति है, उसको लोगों के सामने रखना और उनको रोजगार देना और आत्मो सम्मान बढ़ाना और आत्मनिर्भर बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है।
इससे पहले मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जशपुर विमानतल पर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत का काम 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री साव ने आज नवा रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लोक निर्माण विभाग के 2 वर्ष के कार्यों और आगामी वर्षों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सड़क सुधार का काम प्रदेश में तेज गति से चल रहा है और 15 जनवरी तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 से अब तक 1126 कार्यों के निर्माण के लिए 8092 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। वर्तमान में 3641 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सुदूर इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्रियान्वयन में सड़कों की अहम भूमिका होती है।
आम लोगों के लिए सड़कों का कितना महत्व है, विशेषकर जो दुर्गम इलाके हैं, कठिन इलाके हैं, गांव हैं, बीमारी के समय, बरसात के समय, अन्य ऐसे समयों में जो उपयोगिता सड़कों की होती है, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन, जब आवागमन के साधन ठीक होते हैं तो ये मजबूत होती है।
श्री साव ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण लगातार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने विकसित भारत जी रामजी योजना का विरोध करने पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की आलोचना की है। आज रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में 100 दिनों का काम होता था, लेकिन नई योजना के तहत अब ग्रामीणों को 125 दिन का काम मिलेगा।
जी राम जी का जो बिल है मनरेगा की जगह, पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता था, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी देने वाला है। उसके साथ ही जो योजनाएं बनेगी, जो काम होगा, वह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करेगा कि हमारे ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या काम होना है, उसमें किस प्रकार से बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाए, कैसे कंप्यूटराइज किया जाए, कैसे लाभार्थी को उसका हक मिले, बीच में जो दलाल है उनके पास पैसा न जाए, उसके लिए यह स्कीम लाई गई है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत सेवाओं की कुशल उपलब्धता तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए आज जल सेवा आकलन का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री पाटिल ने कहा कि जल सेवा आकलन ग्राम पंचायतों को अपनी जलापूर्ति प्रणालियों का संरक्षक बनाएगी। इससे ग्राम सभाओं के जरिए निर्णय लेने की प्रक्रिया और मजबूत होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख और सरसंचालक मोहन भागवत कल अभनपुर के पास सोनपैरी गांव में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संत असंग देव जी होंगे। यह कार्यक्रम असंग देव कबीर आश्रम में आयोजित किया जाएगा। श्री भागवत छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर आज रात करीब 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे। अपने प्रवास के दौरान श्री भागवत हिंदू सम्मेलन, युवा संवाद और सद्भावना बैठक जैसे आयोजनों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान संगठन की विचारधारा, सामाजिक दायित्व और युवाओं की सक्रिय भूमिका पर चर्चा की जाएगी। कल सुबह 31 दिसंबर को श्री भागवत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं 1 जनवरी को श्री भागवत सामाजिक सद्भावना बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सभी समाज के प्रदेश प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सड़क सुरक्षा की गंभीरता, चुनौतियों और नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 1 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 जनवरी को रायपुर में शाम 5 बजे उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे की उपस्थिति में हेलमेट और बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, हेलमेट का उपयोग और सावधानी से वाहन चलाने का संदेश दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिलों में सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और नेत्र जांच शिविर, स्कूली बच्चों के लिए स्लोगन, निबंध, चित्रकला तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं ई रिक्शा, ऑटो, बस और एम्बुलेंस चालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इन शिविरों में वाहनों का परीक्षण और रेडियम पट्टियों की जांच की जाएगी। शराब सेवन कर वाहन चलाने से होने वाले नुकसान पर रैली, ग्राम चौपालों में जन जागरूकता कार्यक्रम, गंभीर सड़क दुर्घटना स्थलों का चिन्हांकन और सड़क सुरक्षा मितानों का प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वालों लोगों को सम्मानित किया जाएगा। श्रोताओं, वर्ष 2025 सिर्फ वैश्विक राजनीति का एक और साल नहीं था, बल्कि यह दुनिया के मंच पर भारत के उभार का एक अहम दौर भी था। आर्थिक अनिश्चितता, बदलते भू राजनीतिक हालात और शक्ति संतुलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व के रूप में सामने आए। जाने माने सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ सुशील त्रिवेदी ने कहा कि तमाम वैश्विक और आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेतृत्व के रूप में वैश्विक राजनीति में सबसे उभरते हुए नेता के रूप में नजर आ रहे हैं।
ये जो वर्ष 2025 है, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला रहा। भू राजनीतिक परिस्थितियां कठिन हो गई, कई स्थानों पर युद्ध की स्थितियां निर्मित हैं, आर्थिक मामलों को लेकर काफी संशय और आशंका बढ़ गई। ऐसे समय में मोदी जी ने एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व देने का जो कार्य किया है, उससे वैश्विक राजनीति के क्षितिज पर वे सबसे उभरते हुए नजर आ रहे हैं।
श्रोताओं, इस पूरी बातचीत को आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज रात 9:15 से 9:30 तक प्रसारित किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रवेश नियमों को शिथिल करते हुए 10% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रवेश के लिए पात्र घोषित किया है। यह निर्णय भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संदर्भ में लिया गया है। प्रदेश के नर्सिंग महाविद्यालयों की रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से परिषद ने पात्रता मानदंडों में छूट देने पर सहमति दी है। यह छूट केवल चालू शैक्षणिक सत्र के लिए प्रभावी होगी। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा में 10% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि कल 31 दिसंबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा कल से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में कलमबंद हड़ताल की जा रही है। आज दूसरे दिन भी हड़ताल के चलते इंद्रावती भवन सहित अनेक शासकीय कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। इस हड़ताल का नगरीय निकायों के कर्मचारी और विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों के शिक्षकों ने भी समर्थन किया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज अधिकारियों कर्मचारियों ने रैली भी निकाली। उच्च शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिले के लोहराकोट महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एसएस तिवारी और पिथौरा के 4 सहायक प्राध्यापकों को पीएम उषा मद के अंतर्गत आवंटित राशि में गड़बड़ी के मामले में निलंबित कर दिया है। इस बीच बलरामपुर जिले की रामचंद्रपुर तहसील में पदस्थ पटवारी विवेक शुभम वैभव को फसल गिरदावरी कार्यक्रम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी पर आज सुबह जानलेवा हमला किया गया है। हमले में उनके दोनों हाथों की नसें कट गई हैं, जबकि गले पर भी चोट के गहरे निशान पाए गए हैं। उन्हें जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के गुमला में आयोजित समारोह में जशपुर जिले की स्वसहायता समूहों से जुड़ी जनजातीय महिलाओं की कार्यकुशलता और आत्मनिर्भरता की प्रशंसा की। उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत का काम 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। आरएसएस के प्रमुख और सरसंचालक मोहन भागवत कल अभनपुर के पास सोनपैरी गांव में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 10% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रवेश के लिए पात्र घोषित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।